ओम श्री साईराम। परम प्रिय भगवान बाबा के पुण्य मोक्ष प्रदायक चरणों में मेरा कोटिशय प्रणाम। और यहां पर बैठे हुए सभी भाइयों बहनों विद्यार्थियों को मेरा साईराम। मैं अपनी वार्ता को एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहता हूं। एक बार एक गांव का एक व्यक्ति, भोला भाला सीधा सा व्यक्ति था, उसके पास में एक कोर्ट से एक सम्मन आया कि उसे एक कोर्ट में अपनी एविडेंस के लिए, अपनी पेशी देने के लिए आज जाना है। तो जैसे ही कोर्ट से उसे सम्मन मिला, वो घबरा गया। उसे यह समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो वो अपने सबसे प्रिय मित्र के पास गया और उसको जाकर बोला कि कोर्ट से मेरे लिए एक सम्मन आया है और कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं इनसे मुझे बड़ा डर लगता है, तो कृपया करके आप मेरे साथ चलिए और कोर्ट के अंदर जो है मेरे साथ खड़े रहिएगा। तो उसका जो सबसे निकटतम मित्र था, उसने उसी वक्त मना कर दिया कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। बड़ा मायूस हुआ और वो अपने दूसरे मित्र के पास पहुंचा जो उतना निकट नहीं था, उतना प्रिय नहीं था, और उस मित्र से जाके उन्होंने कहा कि इस तरह से मेरे साथ कोर्ट में चलना है। तो दूसरे मित्र ने भी कहा कि मैं आपके साथ कोर्ट में तो चलूंगा, लेकिन बाहर खड़ा रहूंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। उसने कहा, डर तो मुझे अंदर जाने से लगता है। तो उन्होंने कहा, देख लीजिए, मैं अंदर नहीं चल सकता। उसे बड़ी मायूसी हुई कि देखिए, इतना समय, इतनी ऊर्जा मैंने अपने इन दोनों दोस्तों पर लगाई, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी तो ये मेरे कोई काम नहीं आ रहे। तो उसके बाद वो अपने एक तीसरे मित्र के पास गया जिससे उसका अधिक प्रेम नहीं था, लेकिन उसने उस मित्र को कहा कि इस तरह से जो है मुझे कोर्ट से सम्मन आया है, आप मेरे को मेरे साथ चलना है। तो तीसरे मित्र ने उसे कहा, बिल्कुल, मैं आपके साथ चलूंगा, और ना केवल आपके साथ चलूंगा, पूरे टाइम जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी उस समय तक आपके साथ रहूंगा, और जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी आपके साथ वापस लौट कर आऊंगा। तो ये कहानी जो है वो हमें हमारे जीवन की प्रायिकताओं के बारे में कुछ कहती है, हमारी प्रायोरिटीज जीवन में क्या हैं उसके बारे में कहती है, जिनके ऊपर हम अपना सबसे अधिक समय, अपनी सबसे अधिक ऊर्जा खर्च करते हैं, धन संपत्ति वैभव वेल्थ, इन सब के पीछे। जैसे ही नियति का बुलावा आता है, उसका सम्मान आता है, वैसे ही वो उसी वक्त हमारा साथ छोड़ देते हैं। जब हमें कहीं लेकर जाने की बारी आती है, जब आदमी की मृत्यु आती है, तो उसके परिवार के लोग, उसके रिश्तेदार, उसके मित्र उसको एक स्थान तक ले जाते हैं और उसके बाद में वो भी अपना स्थान छोड़ देते हैं। लेकिन एक भगवान ही है जो हर स्थिति में हमारे साथ रहता है। स्वामी कहते हैं, इन दिस जर्नी ऑफ लाइफ गॉड इज अवर ओनली फ्रेंड। हमारे इस जीवन की यात्रा में ईश्वर ही हमारा सबसे अच्छा मित्र है। बाकी सभी मित्र तो एक फ्रॉग की तरह हैं, एक मेंढक की तरह हैं। जब तक पानी है तब तक मेंढक नजर आते हैं, और जैसे ही पानी समाप्त होता है मेंढक चले जाते हैं। तो जब तक हमारे पास में कुछ संपत्ति है, कुछ नाम है, कुछ यश है, तब तक हमारे मित्र हमारे पास रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो चले जाएंगे तो वो मित्र भी चले जाएंगे। लेकिन जीवन की इस यात्रा में हमारे साथ में ईश्वर हमेशा साथ रहता है। मैं इस बात से अपनी बात इसलिए प्रारंभ की मैंने कि जब मैं भगवान के फोल्ड में आया, जब भगवान के सानिध्य में आया, तो मेरी स्थिति भी कुछ ऐसी थी, मेरी जीवन की प्रायिकताएं कुछ अलग थी। मैं एक ऐसे परिवार से नहीं था जिसके अंदर भगवान को मानने वाले काफी लोग हों। मेरे माता पिता, भाई बहन, दोस्त, भाई बहन, परिवार, रिश्तेदार वगैरह, ये सब, इनमें से कोई स्वामी को मानने वालों में से नहीं थे। लेकिन एक ऐसा समय था मेरे जीवन का जब मैं बहुत डिप्रेशन में था, एक बहुत ही नेगेटिव मेंटल स्टेट ऑफ माइंड में था, तो उस समय भगवान जो है उस जीवन में आए और भगवान ने किस तरह से उसको संभाला, मैं उस बारे में आज ज्यादा विवेचन नहीं करूंगा क्योंकि अभी हम सब लोग आगे के कार्यक्रम के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। एक दो बातें मैं और बताना चाहता था कि किस तरह से भगवान हमको ये आभासित करवाते हैं, ये बताते हैं कि वो जीवन के हर मोड़ पे हमारे साथ हैं। मैं पेशे से एक लेक्चरर हूं, कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। हम लोग गांव में बाल विकास लेने जाते थे, काफी पुरानी बात है, सन 2000 की। तो बृहस्पतिवार का दिन, थर्सडे का दिन होता था। एक गांव में, हमारे शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां पर हम थर्सडे को मॉर्निंग में एक स्कूल में, गांव के एक स्कूल में बाल विकास लेने जाते थे। और वहां से आने के बाद में मेरा कॉलेज के अंदर लेक्चर होता था, कॉलेज में मुझे क्लासेस लेनी होती थी। तो कुछ ऐसा सिलसिला था कि दो तीन दिन से लगातार जो था वो कॉलेज में बिजी, अपने साई ऑर्गेनाइजेशन के कामों में हम लोग इतने बिजी रहे कि मुझे कुछ लेसन्स प्रिपेयर करने का मौका नहीं मिला। तो मैं उस पर्टिकुलरली थर्सडे का दिन था जब गांव से वापस आया और सीधा कॉलेज में गया, उस समय जो था मेरा लेसन प्रिपेयर नहीं था। मैंने अपने एक फ्रेंड, अपना एक मित्र जो वो भी लेक्चरर थे, उनसे मैंने एक बात शेयर की और बोला, मैंने कहा आज क्लास में मैं जा रहा हूं लेकिन क्लास में पढ़ाना क्या है मुझे मालूम नहीं। तो वो भी बड़े चुटकी भरे अंदाज में बोले, अरे आपको क्या चिंता है, आपके तो बाबा है ना, सब देख लेंगे। खैर उनकी उस बात को सुना और मैं धीरे धीरे क्लास में गया, शायद इस समय इस प्रोसेस में कुछ समय गुजार दूं इसलिए। और क्लास में जाने के बाद में मैंने, जैसे हमारे यहां जैसे नियम होता है कि क्लास में जाके बच्चों की अटेंडेंस ली जाती है, बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास थी, मैंने क्लास में जाके बच्चों की अटेंडेंस लेनी शुरू की और अटेंडेंस भी जान करके धीरे धीरे ली जिससे कि उस समय भी कुछ समय निकल जाए। उस प्रोसेस में लगभग 10 मिनट निकल गए लेकिन उसके बाद भी काफी समय था। तो ब्लैकबोर्ड पे कुछ लिखा हुआ था, मैंने डस्टर उठाया और ब्लैकबोर्ड को मिटा, पर जो लिखा था वो मिटा रहा था, इतने में एक स्टूडेंट खड़ा होता है और बोलता है सर। मैंने उसकी तरफ मुड़ के देखा, मैंने कहा बोलो क्या बात है। बोले सर एक, आप बुरा ना माने तो एक बात मुझे कहनी है। मैंने कहा बोलिए। बोले सर आज हम सब स्टूडेंट्स ने मिलकर डिसाइड किया है कि आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज हमें पढ़ाई नहीं करनी है, आज हम सब लोग जो है पढ़ाई के अलावा कुछ और बात आपसे करना चाहते हैं। तो भगवान हमारे जीवन के किस स्तर तक अंदर आते हैं और हम छोटी छोटी बातें जो हम शायद किसी से शेयर नहीं करते, भगवान उस स्तर तक आकर हमारे जीवन की, हमारे जीवन में हमारी आके मदद करते हैं। एक और घटना मेरे जीवन की जो मैं इस बात से बताना चाहता था कि भगवान किस तरह हमारे सबसे निकटतम मित्र हैं। एक बात हम लोग, जब मैं आपको बता रहा था कि हम लोग गांव में जाते थे पास में, वहां एक दिन की बात है, शाम को हम लोग किसी गांव में जा रहे थे। उस दिन मेरा पर्टिकुलरली उस दिन स्कूटर खराब हो गया, तो मैंने अपने एक दूसरे फ्रेंड का, मित्र का एक स्कूटर ले लिया और मैंने कहा कि तुम्हारा स्कूटर दो, मेरा स्कूटर खराब हो गया। मैंने उसको मैकेनिक को ठीक करने दिया और उसको लेकर मैं वहां चला गया गांव में। गांव में हमने जो अपनी साई एक्टिविटीज की, साई गतिविधियां करने के पश्चात जब रात का समय हुआ तब हम लोग वापस गांव से लौटने लगे। तो जब स्कूटर को स्टार्ट किया तो स्कूटर तो स्टार्ट हो गया लेकिन उसकी हेडलाइट नहीं जली। मुझे पता लगा कि उसकी हेडलाइट जो है वो फ्यूज हो चुकी है। अब मुझे जब स्कूटर लाया तो दिन का समय था, यह मालूम नहीं था, लेकिन रात के समय बिना हेडलाइट के गांव से शहर तक 10-12 किलोमीटर तक जाना गांव के रस्तों से वो बड़ा मुश्किल था। खैर जैसे तैसे उस प्रक्रिया में एक इंडिकेटर लाइट जला के हम लोग गांव की के रस्ते से मेन रोड तक, हाईवे तक आए। और जब वहां मेन हाईवे पर पहुंचे तो उसी वक्त एक पीछे से एक मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति आया और उसने बोला, देखिए भाई साहब आपकी, आपके स्कूटर की लाइट नहीं जल रही है, आप एक काम कीजिए, आप आगे चलिए, मैं पीछे से आपको लाइट दिखाता हूं और आपको पीछे एस्कॉर्ट करके लेके चलता हूं। तो भगवान हमारे जीवन में किस तरह एक सच्चे मित्र का रोल अदा करते हैं। और ये ऐसा कोई मेरे जीवन में नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत महान व्यक्ति हूं जो कि जिसके जीवन में ऐसा है, हम सबके जीवन में है। और हमारा जो सत्यसाई संगठन है वो हमें ये मौका देता है, वो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हम भगवान के साथ अपनी उस रिलेशनशिप को और मजबूत करें, भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसको उस और मजबूत करने का मौका हमें संगठन जो है वो देता है। और भगवान के इस 90th बर्थडे ईयर में और हमारे सत्यसाई सेवा संगठन के जब हम 50 वर्ष मना रहे हैं, स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं, उस समय हम सब की ये प्राथमिकता है कि हम भगवान का जो ये मिशन है और भगवान की जो शिक्षाएं हैं उनको समाज के सभी वर्गों तक लेकर जाएं, समाज के सभी लोगों तक लेकर जाएं, क्योंकि आज इस बात की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि समाज को ऐसा कोई मॉडल नहीं मिलता, समाज के सामने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उन्हें ये दर्शाए कि सेल्फलेसली बिना किसी स्वयं के फायदे के भी कोई कार्य कोई कर सकता है। समाज में ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो कि बिना किसी फायदे के सब मिलकर एक ऐसी गतिविधि करते हैं जिससे केवल महज उनको आनंद प्राप्त होता है। ऐसा हम शायद यहां प्रशांति निलयम में बैठकर वैल्यूज की को देखना हमारे लिए बहुत आसान है क्योंकि सब तरफ एक ऐसा एक अच्छा माहौल है, लेकिन जब हम विश्व में जाते हैं, जब हम संसार में जाते हैं, समाज में रहते हैं, तो वहां पर वैल्यूज को एग्जिबिट करना जो है वो हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो उस सब के अंदर हमारा सत्यसाई सेवा संगठन उसका रोल सबसे महत्वपूर्ण है। तो भगवान के इस 90th ईयर में हम सब लोगों को यही प्रयास करना चाहिए कि भगवान का जो की जो शिक्षाएं हैं वो समाज के लोगों तक पहुंचे, और उन शिक्षाओं को भगवान के की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो हमारा स्वयं का जीवन है। अगर इस जीवन के माध्यम से हम कुछ अपने जीवन में परिवर्तन करके लोगों को दिखाएंगे तो निश्चित रूप से भगवान की जो शिक्षाएं हैं वो लोगों तक पहुंचेगी। राजस्थान सत्यसाई सेवा संगठन राजस्थान के संबंध में मैं कुछ बातें कहना चाहता था कि हमारा जो सत्यसाई सेवा संगठन राजस्थान है वो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंशन के हिसाब से वहां काफी संभावनाएं हैं। राजस्थान में हमारे यहां पे 25 समितियां हैं और राजस्थान में 33 जिले हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सभी जिलों में राजस्थान में समितियां नहीं है, तो राजस्थान के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंशन को लेकर हम सब लोग इस बात को लेकर काफी गंभीर हैं। और विशेष रूप से इस वर्ष में, पिछले वर्ष जब हमारा राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया तो उसमें हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री वी श्रीनिवासन जी उसमें आए थे, और उसके इनॉग्रेशन के टाइम में उन्होंने हमसे यही कहा था कि हम सब लोगों का जो प्रयास है विशेष रूप से राजस्थान के भक्तों का वो ये होना चाहिए कि भगवान का संदेश राजस्थान के हर जिले में पहुंचे, इस बात को हम सुनिश्चित करें। तो इस वर्ष जो विभिन्न गतिविधियां हमारे द्वारा राजस्थान में आयोजित की गई उसमें हमारा जो फोकस था, हमारा जो एम्फेसिस था वो इसी बात पर था कि भगवान का संदेश नए नए तरीके से नए नए लोगों तक पहुंचे। कुछ गतिविधियों के बारे में मैं बात करूंगा। इसी तरह राजस्थान की जो भूमि है वो बड़ी पवित्र है क्योंकि भगवान ने अपने भौतिक स्वरूप के अंदर 3 बार राजस्थान में स्वामी आए, एक बार 1972 में, एक बार 1975 में और एक बार 1982 में। और स्वामी ने अपने नाम से अनंतपुर के बाद में कोई पहला महिला कॉलेज पूरे भारत में अगर शुरू किया था तो वो सत्यसाई कॉलेज फॉर वुमेन एट जयपुर, जयपुर के अंदर महिलाओं के लिए स्वामी ने कॉलेज वहां पर स्थापित किया। इसी तरह से राजस्थान में 3 सत्यसाई स्कूल्स हैं जो भगवान की शिक्षाओं को समाज तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस वर्ष हमने 18 जनवरी को एक कैंप आयोजित किया था जो कि पूरे राजस्थान के सभी समिति केंद्रों ने उसमें भाग लिया, जो कि एक मास ब्लड डोनेशन कैंप था। और उस पूरे ब्लड डोनेशन में सभी राजस्थान के सभी समिति केंद्रों ने एक साथ ब्लड डोनेशन किया और इससे एक बड़ा एक अच्छा एटमॉस्फेयर जो था वो राजस्थान में क्रिएट हुआ। इसी तरह अभी 21 जून को हम लोगों ने एक राजस्थान में एक हार्ट कैंप किया, मेडिकल चेकअप एंड ट्रीटमेंट कैंप, जो कि सत्यसाई हॉस्पिटल राजकोट की कोलैबोरेशन उनके साथ मिलकर हम लोगों ने आयोजित किया। और उस कैंप में पूरे राजस्थान के सभी जिलों से करीब 1000 मरीज उदयपुर के अंदर जहां पर हमने कैंप आयोजित किया था वहां पर आए और वहां पर डॉक्टर्स ने उनका परीक्षण किया और उनमें से 250 मरीजों को डॉक्टर्स ने डेट्स दी ऑपरेशन की। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि उन 250 मरीजों की को जो ऑपरेशन की डेट्स दी गई थी उनमें से अब तक 80 पेशेंट्स का 80 मरीजों का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट जो है हार्ट जो है इलाज किया जा चुका है। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर जो हमारे राजस्थान की विभिन्न समितियां हैं वो उसको पेशेंट को फॉलोअप करने का काम करती हैं। वो पहले उनको वहां राजकोट भिजवाने का और उसके बाद में जब पेशेंट्स वहां से आ जाते हैं तो उनको फिर उसको देखती हैं कि उनको प्रॉपरली मेडिसिन लें, तो फॉलोअप करने का काम जो है वो राजस्थान के द्वारा किया जा रहा है, इसके हमारे राजस्थान के अंदर जो समितियां हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह से हमने कॉन्सर्ट्स, सेमिनार्स, वॉक फॉर वैल्यू, ऐसे कॉम्पिटिशन फॉर स्टूडेंट्स, ये सब गतिविधियां जो हैं वो राजस्थान के अंदर समय समय पर आयोजित की हैं और इस पूरे वर्ष में इस पूरा वर्ष पर्यंत तक हम करते रहेंगे। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि भगवान का जो संदेश है वो सभी लोगों तक पहुंचे। आज हम राजस्थान के सभी भक्त लोग यहाँ भगवान के पावन चरणों में, भगवान की सन्निधि में हम यहाँ तीर्थ यात्रा के लिए एकत्रित हुए हैं और इन 3 दिनों में हमें भगवान के चरणों में असीम आनंद प्राप्त होने वाला है। तो इसके लिए मैं भगवान के चरणों में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम सभी राजस्थान के भक्तों को आशीर्वाद दिया कि हम यहां पर आ पाए और भगवान के चरणों में हम 3 कार्यक्रम जो है वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज प्रथम कार्यक्रम जो भी यहां पर प्रस्तुत होगा वह है संत कबीरदास के जीवन पर आधारित एक नाटक ढाई आखर प्रेम का। संत कबीर के बारे में हम सभी जानते हैं जो उत्तरी भारत के बड़े अच्छे कवि और उसके अलावा एक अच्छे संत हुए हैं और जिनका जो संदेश है वो यही है कि समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, उन सब से बाहर निकल के हमें सही सच्चे हृदय से भगवान को याद करना चाहिए और मानव की सेवा करनी चाहिए। उसके बाद कल एक विशेष कार्यक्रम जो है हमारे बाड़मेर से जो कि पाकिस्तान बॉर्डर के पास का क्षेत्र है उस जिले से आए हुए हमारे यहाँ कुछ लोक कलाकार हैं जो यहाँ पर एक प्रस्तुति देंगे भगवान के चरणों में जिसका शीर्षक है पधारो मारे देश। कि भगवान को हम आमंत्रित कर रहे हैं, भगवान आप हमारे देश में पधारिए। उसके बाद उसके अगले दिन 9 तारीख को 9 सितंबर को राजस्थान के द्वारा एक ड्रामा प्रस्तुत किया जाएगा जो भगवान के द्वारा प्रारंभ किए हुए श्री सत्यसाई विलेज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम SSSVIP पर आधारित है और जिसका शीर्षक है साई ग्राम वाहिनी। तो मैं अब और समय ना लेते हुए आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने मुझे इतनी देर शांति से सुना, उसके लिए धन्यवाद। और भगवान को पुनः मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि भगवान के चरणों में हमें आने का मौका मिल रहा और यहां भगवान की सन्निधि में हम ये 3 कार्यक्रम प्रस्तुत कर पाएंगे। जय साई।
Om Shri Sai Ram, offering most humble salutations at the lotus feet of our beloved Bhagwan. Respected elders, dear brothers and sisters, Sai Ram to all. Bhagwan has always stressed that in this world, everything else is complicated. God alone is simple. But there was a time in the history of India when following one's religion was very complicated. The religion was overloaded with customs and rituals. If somebody wanted to worship God, then one needed the mediation of either Pandit or Maulvi to establish communion with God. In other words, the time was just ripe for the Nirgun Nirakar to take the physical form appropriate to the need of time and come down. Exactly, this was the time when Kabir Das appeared on the scene in 1440 to propound the universal path based on the principles of Dev Preeti, Pap Bheeti and Sanghaniti. Kabir Das led a balanced life of a householder and spiritual seeker. Through his dohas, he educated the public about the true meaning of humanity, morality and spirituality. Today, we, Sai Youth of Sri Satya Sai Seva Organization Rajasthan, present at the divine lotus feet of our beloved Bhagwan, Sri Satya Sai Baba, a musical drama in Hindi entitled Dhai Akhar Prem Ka, which is based on the life and teachings of Saint Kabir Das. Jai Sai Ram.
भगवान बाबा ने हमेशा कहा है, हमारे देश भारत की ये भूमि है पुण्य भूमि, योग भूमि, त्याग भूमि और संपूर्ण विश्व के आध्यात्मिक ज्ञान की जन्म भूमि। भगवान ने गीता में कहा, समय, काल और परिस्थिति के अनुसार मैं निराकार से साकार होता हूं और मानव चोला पहन चला जाता हूं। मेरी सबसे उत्कृष्ट कृति मानव के बीच सब कुछ सुधारने। लगभग 500 साल पुरानी ही तो बात है, 15वीं शताब्दी का हमारा देश सब तरफ जैसे घोर अंधकार छाया हो और धार्मिक कर्मकांड, रीति रिवाज, छुआछूत, झूठे आडंबर, ऐसा मत करो, ऐसा किया तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसे छू लिया तो तुम अपवित्र हो जाओगे, अरे अरे जनाब क्या कर रहे हो, ऐसा किया तो काफिर हो जाओगे, बस हर तरफ ईश्वर और खुदा के नाम की धमकी और डर। ऐसा लगता था ईश्वर या खुदा करुणा दया करने वाले नहीं, बस डराने और दंड देने वाले हैं। लगता कि धर्म तो बस कटघरे में कैद है और उसे कैद करने वाले हैं पुरोहित, ब्राह्मण, मौलवी और काजी। सब कुछ तो था उस समय के धर्म या कहूं मजहब में, बस नहीं था तो केवल इंसान का उस ऊपर वाले से प्रेम, एक ऐसा प्रेम जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता होती है तो बस ये समझने की कि इंसानियत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है उस तक पहुंचने का। बस यही कुछ चल रहा था हमारे देश में। इसको सुधारने के लिए अब की बार चोला धारण किया उस निर्गुण निराकार ने कबीर दास का। कहते हैं कबीर दास की मां एक ब्राह्मण थी और उन्हें तालाब के किनारे बिलखता छोड़ गई थी और तभी उस बालक पर नजर पड़ी एक मुस्लिम दंपत्ति नीरू और नीमा की। अल्लाह ने उन्हें कोई औलाद नहीं दी और वो इसे ऊपर वाले की देन समझ अपने घर ले आए।
बहुत अच्छे नीरू भैया, बहुत अच्छे।
नाम रखा क्या नीरू भैया?
नहीं, अभी नहीं रखा।
तो देर किस बात की? ये है काजी और ये है मुल्ला, उनके हाथ में कुरान शरीफ भी है, नाम देख लेते हैं।
कबीर, कुमरा, अकबर। कबीर, कुमरा, अकबर। अरे ये क्या, बच्चे के नाम रखने को देखते हैं तो सबके सब अल्लाह के नाम ही आते हैं, इंसानों के नाम नहीं रखे जाते। मौलवी साहब आप देखिए,
कबीर, रहीम, कुमरा, कबीर, अकबर, बड़े ताजुब की बात है, कबीर शब्द ही बार बार क्यों आ रहा है? ये बच्चा जरूर शैतान की औलाद है।
अपने अल्लाह के नाम से कभी इंसानों को बुलाया नहीं जाता। नीरू भैया जल्द से जल्द इस बच्चे को मार दो।
नहीं, खत्म कर दो इसे।
नीमा लाओ इस बच्चे को मुझे दो।
नहीं, नहीं दे सकती। अच्छा बुरा कुछ ना पहचानने वाले मासूम की आप यूं जान लोगे?
नीमा, काजी को मना नहीं कर सकते, मौलवी के हुक्म को नहीं टाल सकते। लाओ मुझे दो, लाओ।
नहीं, मत मारिए।
ठहरो।
सलाम अलैकुम।
सलाम अलैकुम।
सलाम अलैकुम।
अस्सलाम अलैकुम।
आप लोग मुसलमान ही है ना? इस्लाम का मतलब जानते हो? इस्लाम का मतलब है शांति, और इस्लाम को भूलकर इस मासूम बच्चे को मार रहे हो।
शेख साहब, ये मामूली बच्चा नहीं है।
इसलिए इंसानियत को भूल जाओगे तुम? अजीमो शान वाला, रहमो दीन वाला अल्लाह बार बार तुम्हारे लिए कबीर नाम क्यों देता है मैं नहीं जानता। नीरू, बच्चे को कबीर कहकर बुलाओ, एक अच्छा मुसलमान बनाओ, थोड़ा बड़ा होगा तो मैं इसे पढ़ाऊंगा।
अपने अबोध जीवन को पाकर ये बच्चा कबीर बड़ा होने लगा, पर इस मौलिक संसार की छटपटाहट उसे बेचैन किए रहती थी। उसे उसके जीवन में गुरु का इंतजार था, जो भव सागर में उसके विचारों को एक नई दिशा दे सके।
श्री राम का मंत्र जपो जपो, श्री राम का मंत्र जपो जपो, श्री राम का मंत्र जपो जपो, जपो जपो मंत्र जपो जपो, श्री राम का मंत्र जपो जपो, श्री राम का मंत्र जपो जपो। कौन हो तुम और इस आश्रम में क्यों आए हो?
श्री रामानंद स्वामी के दर्शन को आया हूँ।
तुम्हें दर्शन? कहाँ जमीन, कहाँ आसमान, वो तुम्हारे जैसे आदमियों को दर्शन नहीं देते हैं।
देखते हैं, शायद मंत्रोपदेश भी दे सकते हैं, किसे पता।
हाँ, मंत्रोपदेश, सर पर हाथ रखकर मंत्रोपदेश देंगे तुमको।
कबीर, यहाँ क्यों आए हो? आने के लिए मना किया था ना?
स्वामी, रोक नहीं सका अपने आप को, रामानंद जी के प्रवचन,
वो सबके सब ऐसा ही तो तुम्हें सुनाता हूँ मैं।
उनके मुख से सुनना चाहता था, जो भगवान दिखाई नहीं देता उसे देखने की इच्छा तो हर भक्त के हृदय में होती है ना।
तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं होगी?
बाहर नहीं आएंगे क्या?
आएंगे, पूरे दिन में एक बार ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के लिए आते हैं।
कहाँ स्नान करते हैं?
हर बार वही पंचगंगा घाट पर। कबीर, और कुछ पूछना है तुम्हें?
जी हाँ स्वामी, मंत्रोपदेश क्या है जरा बताएंगे मुझे?
एक गुरु अपने हाथ के स्पर्श से शिष्य को शक्ति प्रदान कर एक पवित्र मंत्र का उसके कान में उच्चारण करे, यही मंत्रोपदेश है।
राम राम, तुम कौन?
धन्य हो गया स्वामी, धन्य हो गया, आपके पवित्र चरण स्पर्श से तो मेरा जीवन धन्य हो गया स्वामी।
कौन हो वत्स तुम?
मैं आपका शिष्य स्वामी, आपका शिष्य बन गया स्वामी, धन्य हो गया स्वामी, फिर आऊंगा स्वामी।
रामानंद जी के मुख से निकले शब्दों को कबीर ने अपने जीवन का मंत्र बना लिया। राम राम के उन शब्दों ने कबीर को जीवन मार्ग दिखा दिया। ये राम कोई अयोध्या में जन्मे राम नहीं थे, कबीर के राम तो निर्गुण हैं, सच्चिदानंद हैं। निर्गुण नाम जपयू रे भैया, अवगति की गति लाखी न जाए।
ना दो।
उस राम की भक्ति में थे जो अदृश्य हैं, सर्वत्र हैं, सहज हैं, सभी के मन में हैं। उनकी ये बातें हिंदुओं के धर्मों के खिलाफ थी, उनके पाखंड और जाति पाति के खिलाफ थी। दूसरी ओर एक हिंदू धर्म गुरु को एक मुसलमान अपना गुरु बनाए, अपने धर्म के आडंबर बताए, धर्म को हिंसक बताए, ये बात मुसलमानों को भी नागवार गुजरी। सभी ने मिलकर कबीर की खिलाफत शुरू कर दी।
शिवानंद तिवारी जी, हमारी हालत मैंने आपको बताई थी ना, घर में बहुत तकलीफ है। हमारा कबीर है कि बातें नहीं सुनता, काम ही नहीं करता। दया करके मुझे 100 आने और उधार देंगे तो मैं 1 महीने में वापस कर दूंगा, इनकार मत कीजिएगा।
नहीं नहीं, वैसे भी तुम्हारा बहुत बकाया है, मैं और नहीं दे सकता।
नीरू, अपने बेटे को तुम संभाल कर रखोगे या फिर हम उसे संभालें?
उसने क्या गलती की है?
क्या गलती की है? मजहब पर मिट्टी डाल रहा है, मस्जिद जाने से मना करता है, कहता है कि क्यों मस्जिद पे बैठ के मुर्गे की तरह भांग देते हो? क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है?
भगवान की मूरत को पत्थर कहता है, पूजा पाठ को ढोंग कहता है, व्रत उपवास उसकी नजर में आडंबर है। ये हमारे धर्म का घोर अपमान है, घोर अपमान। हम कबीर को नहीं छोड़ेंगे।
अभी नादान है, उससे मैं बात करूंगा। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे, उसे माफ कर दीजिए।
आइंदा उसने ऐसा किया तो उसे देख लेंगे।
हाँ, चलो चलो।
गुरु रामानंद के दर्शन को कबीर व्याकुल रहते, पर रामानंद जी अपने आश्रम से बाहर ही नहीं निकलते थे। कबीर का मन अपने गुरु के दर्शन को बहुत व्याकुल था।
कबीर भैया, लगता है रामानंद जी आश्रम में नहीं है।
उन्हें देखने का हमें नसीब नहीं है।
हम अंदर चले जाते हैं, कोई तो मिलवा देगा हमें।
तुम जितना आसान समझते हो उतना आसान नहीं है। नमस्कार स्वामी जी, उन्हें देखने की बहुत आशा लेकर आया हूँ।
निराश मत हो कबीर, रामानंद जी काशी के राजा को आशीर्वाद देने के लिए किले पर गए हैं, वापस आ जाएंगे।
तो ठीक है, उनके आने तक हम जरा यहीं रुकेंगे।
तुम रुको भैया, क्या है कि गांव भर के कपड़े धोने के लिए घाट पर पड़े हैं।
ठीक है।
अच्छा स्वामी जी, चलता हूँ।
रुकिए रुकिए, स्वामी जी से मिलने आया हूँ।
जरूरत नहीं है, वे पर्दे से बाहर नहीं आते हैं।
कोश, गर्भ कोश से भी बड़ा पर्दा है, उससे ही बाहर निकल गए तो संसार से कैसा पर्दा।
कौन कौन कह रहा है ये सब?
आपका शिष्य हूँ कबीर दास।
मेरा शिष्य? तुम्हारा नाम तो कभी नहीं सुना।
नाम नहीं जानते लेकिन प्रवचन दिया है।
कब?
आज सुबह पंचगंगा घाट पर स्वामी।
ओ, मेरे चरण के नीचे आया वो तुम्हारा शीश था।
जी हाँ स्वामी, संसार के सब गुरु अपना हाथ मस्तक पर रखकर अपने शिष्यों को दीक्षा देते हैं। आपने चरणों के स्पर्श से मुझे ज्ञानोपदेश दिया है। मंत्र ही नहीं, मंत्र प्रयोग का भी आपने ही ज्ञान दिया है।
आश्चर्य की बात,
आपने कहा राम पूजा से ही मुक्ति मिलती है। गहरे समंदर को पार करने के लिए केवल राम नाम की एक कश्ती ही बहुत है।
सत्य कहा। अब पर्दा कैसा? हटा दो पर्दा।
धन्य हो गया स्वामी।
क्षमा करे स्वामी, वो तो मुसलमान है।
सब उस राम की माया है स्वामी।
दीर्घ आयुष्मान भव। मन के पर्दे जिसके साफ हो जाएं, उसकी आंखों पे पर्दा भला कैसे हो सकता है। अब से तुम यहाँ अपनी इच्छा से आ जा सकते हो।
धन्य हो गया स्वामी, धन्य हो गया।
अपने गुरु के आश्रम में शिष्य का आना जाना उसकी मनोकामना पूर्ण होने जैसा हो। कबीर धीरे धीरे धर्म के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों पर भी अपनी आवाज उठाने लगे, जिससे धर्मों के मठाधीश उनके और खिलाफ होने लगे।
अपना मजहब ब्याज के धंधे को नहीं मानता, फिर भी आप वही कर रहे हो?
मतलब मैं ब्याज का धंधा करता हूँ, ऐसा सोचते हो तुम?
दूध मतलब सूद नहीं, कम पैसे देके हमसे ज्यादा काम लेते हैं।
तुम लोग तो ऐसा नहीं सोचते थे, फिर आज ऐसा ख्याल कैसे आया तुम्हारे दिमाग में?
गुरुवे नमः।
क्या बात है, जबान बदल गई?
तो क्या हुआ, भाव तो एक है ना?
हाँ वो तो ठीक है। बुनकर का काम तो याद है ना?
बुनकर का काम ही नहीं, आपकी सारी नीतियाँ भी याद है मुझे।
तो क्या इसलिए उन काफिरों के साथ मिलकर बाजार में नाच रहे हो तुम?
खुदा जाने, खुदा जाने। ऊपर वाले की कृपा हो तो कोई भी धर्म हो, एक ही बात है।
अच्छा अच्छा, तो मुझे भी नसीहत देने लायक हो गए। बोलो किस काम से आए हो?
इनकी मेहनत की कमाई आप दबा रहे हो, जो देते हो उससे 3 गुना ज्यादा भी देंगे तो भी कम है।
सही बात है, इन्हें 4 गुना भी देता, जो नहीं देता हूँ तो मजहब के लिए बचाता हूँ, मक्के के सफर के लिए जमा करता हूँ, तो क्या गलत करता हूँ?
अल्लाह सब जगह है, तो मक्का जाने की क्या जरूरत?
ऐ दुष्ट काफिर, हज का मजाक उड़ाता है, कल नमाज का भी मजाक उड़ाएगा शायद। उन काफिरों का सिर बहुत चढ़ गया है तुझ पर। छी, सूरत मत दिखाना अपनी।
ठीक है, नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इनका क्या?
तुम्हें क्या जरूरत है?
नहीं नहीं, मुझे इनकी जरूरत नहीं। लो भाई लो।
कहते हैं ना कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लिखना सत्य, गुरु बिन मिटे न दोष। तो अपने सभी दोषों को मुक्त करने की इच्छा, अपने गुरु को मिलने की, बात करने की, सुनने की लालसा बारंबार उन्हें आश्रम तक ले आती।
एक तो मुसलमान ऊपर से राम नाम जपता है,
और तो और किसी काफिर की सूरत तक ना देखने वाले अपने गुरुजी ने अपने पर्दे तक हटवा दिए, बड़े आश्चर्य की बात है।
मतलब कोई भी काफिर अपने आश्रम में कभी भी आ सकता है?
अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो?
मैं गुरुजी के दर्शन के लिए आया हूँ।
दर्शन? तुम आश्रम में तो आ सकते हो, परंतु कक्ष में जाने की अनुमति नहीं है तुम्हें।
और तो और अभी पूजा में है गुरुजी।
पता चला है तभी तो आए हैं। क्यों कबीर भैया, जब यहाँ तक आए हैं तो अंदर जाने में क्या है?
रुको रुको रुको,
हमको छूना नहीं, नहाना पड़ी।
गुरुजी पूजा कर रहे हैं,
इसीलिए तो आया हूँ। गुरुदेव गुरुदेव, आपकी पूजा सामग्री में एक चीज की कमी है।
कबीर, कमी है? क्या कमी है?
तुलसी के पत्ते।
हाँ सत्य कहा।
मैं लेकर आया हूँ गुरुदेव, क्या अंदर आ सकता हूँ?
मत लीजिए गुरुदेव, मैं लेकर आता हूँ। उस काफिर के हाथ से आप तुलसी के पत्ते लेंगे क्या?
तुलसी के पत्ते और गंगा जल में कैसी अपवित्रता। कबीर तुम अंदर आ सकते हो।
गुरुदेव मैं अकेले नहीं आया, मेरे साथ तुच्छ जाति का एक आदमी भी है।
मनुष्य का मन पवित्र होना चाहिए, कोई भी जाति का हो, यहाँ कोई भी आ सकता है।
लीजिए, बैठो बैठो।
कबीर, हंस क्यों रहे हो?
गुरुदेव, मुझे छोटा सा संदेह है।
क्या है वो?
मन में भक्ति होनी चाहिए, मूर्ति पूजा जरूरी है क्या?
भक्ति परम चरण तक पहुंच जाए तो मूर्ति पूजा आवश्यक नहीं, नाम स्मरण ही बहुत है।
इसी तरह कबीर की बातें लोगों के मन में बैठने लगी। सच्चे ईश्वर के स्वरूप लोगों को समझ आने लगा। वे सामाजिक कुरीतियों का विरोध करने लगे। वे किसी भी धर्म के साथ नहीं थे, वे ना हिंदू थे ना मुसलमान, वे तो सच्चे प्रभु के बंदे थे जो बस सब कुछ खरा खरा कहते थे।
भोजन कभी अछूत नहीं होता।
तुम कहते हो भोजन पर भ्रम स्वरूप है, इसलिए कोई भी दे तो खा सकते हैं हम?
ऐसा मैं नहीं कहता, उपनिषद में कहा गया है, अन्नम ब्रह्मेति गजानाथ।
सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, आना देवा कलितमानी, भूतानी जायंती, आने ना जातनी जीवंती।
कबीर, आज तुम्हारे बारे में फैसला इधर या उधर हो जाना चाहिए।
मेरा फैसला क्या है? आप यहाँ किस लिए आए हैं, फरमाइए जरा।
तुम्हारा इस तरह रोज काफिरों के साथ बैठकर बकवास करना अच्छी बात नहीं है।
आप बैठेंगे तो आपके साथ भी बकवास करूंगा।
बैठने नहीं आया हूँ मैं, तुम्हें अजान सुनाई नहीं देती?
बिल्कुल सुनाई देती है।
सुनाई देती है तो मस्जिद क्यों नहीं आते, नमाज क्यों नहीं पढ़ते?
आपने तो कुरान शरीफ अच्छी तरह पढ़ी है, आपको मैं बताता हूँ कि नमाज चलते हुए सवारी करते हुए भी पढ़ी जा सकती है, उसी पवित्र ग्रंथ में लिखा हुआ है। मौलवी जी, मैं फातहा जैसा करना चाहिए वैसा ही कर रहा हूँ। और तो और मौलवी जी, आप जो नहीं करना चाहिए वो गलतियाँ करके भी मस्जिद के ऊपर से गला फाड़ के चीखते हैं, बिना आत्मशुद्धि के वो चीख अल्लाह सुनता है क्या?
बदमाश, मुंह बंद कर। कलमा पढ़ना, नमाज, रोजा, शकात, कुर्बानी जरूर करनी चाहिए। रमजान शरीफ आने वाला है, तुम्हें रोज रोजा रखना होगा।
मौलवी साहब, मैं आपकी तरह रोजा नहीं रखता। रमजान के महीने में दिन भर भूखे सड़ते हो, अंधेरा होते ही पेट की आग बुझाने बैठ जाते हो। बोलो ठीक है, जीव हिंसा करना किसी भी धर्म में नहीं है।
तुम्हें ऐसे समझाऊंगा तो समझ नहीं आएगा, तुम्हें कैसे समझाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। चलो चलो यहाँ से।
अच्छी डांट लगाई तुमने उसे, उस धर्म की कमजोरियां तुम्हें अच्छी तरह पता है।
हर धर्म में अच्छा बुरा होता है, तुम्हारे धर्म की कमजोरियों का क्या तुम पालन नहीं करते हो?
है? क्या क्या कहा?
सही कह रहा हूँ भाई, वो लोग एक महीना हर रोज पूरा दिन उपवास रखते हैं, आप लोग साल में 24 एकादशी के व्रत रखते हैं, वो लोग रात होते ही पेट फटने तक खाते हैं, और आप लोग एकादशी के दिन 3 दिन का भोजन गला भरने तक खाते हैं, और पिंडदान के बाद इंसान की 13वीं में जो व्यंजन बनते हैं वो तुम्हारे धर्मशास्त्र में ही तो लिखा है।
चले ऐसे।
कबीर दास जी के अनुसार कर्म ही पूजा है और उत्तरदायित्व निभाना ही धर्म है। वे कहते हैं कि अपना जीवन बनाना है तो कड़ा परिश्रम करो। राम ने जिस कार्य के लिए इस जहां में भेजा है उसे संपूर्ण करो।
करे
कबीरदास जी ने लोई नामक युवती से निकाह किया और उनके दो बच्चे हुए, कमाल और कमाली। उनका मानना था कि कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह मत मोड़ना, सन्यास की ओर मत जाना। वे कहते हैं कि सही अर्थों में जीवन का अर्थ परिवार में है। इसी तरह बहुत से साधु अपनी बुद्धि और शास्त्रों के प्रश्न की जिज्ञासा को शांत करने के लिए कबीरदास जी की शरण में आते। कबीर उन्हें सरल और सच्चा मार्ग दिखाते जिसमें कोई कपट नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई पाखंड नहीं, बस प्रेम ही प्रेम है। मानव का मानव के लिए, मानव का जीवों के लिए, मानव का प्रकृति के लिए, सभी को सभी से जोड़ने के लिए, मिलजुल कर अपने जीवन का आनंद उठाने के लिए।
हे महात्मा, साधारण मानव को मुक्ति कब मिलती है?
पानी के समंदर में आग लगने पर।
पानी के समंदर पर आग लगनी चाहिए। आह आह,
सागर से मिलने वाली हर नदी जलकर राख होनी चाहिए।
नदी जलकर राख होनी चाहिए। वाह वाह वाह,
मछली पेड़ पर चढ़ेगी तब ये कबीर जिसे देखना चाहता है उसे खुली आंखों से देख पाएगा।
आह हा हा, कितना अच्छा कहा आपने महात्मा, थोड़ा खुलकर बताइए।
गुरुओं के बताए गए गुप्त ज्ञान को विस्तार से बताता हूँ। पानी का समंदर मतलब ये शरीर, आग मतलब ज्ञान, नदियां मतलब इंद्रियां, मछली मतलब आत्मा, पेड़ मतलब परमात्मा। शरीर ज्ञान की अग्नि में लुप्त हो जाए तो इंद्रियां निष्क्रिय होकर आत्मा परम आत्मा में विलीन हो जाती है।
अच्छा, एक बात बताइए, आप कहते हैं कि ना तो तीर्थ यात्रा से और ना ही धर्म ग्रंथों को पढ़ने से आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, तो फिर बताइए कि आखिर आत्म साक्षात्कार करने का मार्ग क्या है? ज्ञान अमृत है, इस अमृत वर्षा से पेट भर गया।
तुम्हारा पेट भले ही भर गया पर मेरे पेट में तो चूहे दौड़ गए, भिक्षा ढूंढनी पड़ेगी।
संतों, महानुभावों, आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो मेरे अतिथि बने आज, ठीक है?
सीधी तरह इन काफिरों से दोस्ती तोड़ोगे या फिर हम सब मिलकर तुम्हारा सर फोड़ दें?
तुम्हें जैसा समझ में आए वैसा करो। मैं जाति धर्म नहीं मानता, मुझे जैसा जीना है मैं जीऊंगा, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है।
क्या कहा तुमने, कितना घमंड है तुम्हें।
ये कैसा अन्याय है भाई, तुम लोग कैसे इंसान हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भूखे लोगों को खाना खिलाना क्या गलत काम है? भूख तो भूख है, उसका कोई जाति धर्म नहीं है।
आज से हम तुम्हारा बहिष्कार करते हैं।
आप लोग मेरा बहिष्कार करोगे? जिन लोगों में मानवता नहीं ऐसे लोगों के बीच हम एक पल नहीं रहेंगे।
कल सुबह तक नहीं गए तो तुम्हारा घर जला देंगे, चलो।
तुम्हें कष्ट करने की जरूरत नहीं है, सब खुश रहो।
और इस तरह कबीरदास जी ने मगहर छोड़ दिया और काशी के समीप ही परिवार सहित अपना आशियाना बसाया। कबीरदास जी को मानने वाले उनके साथ यही चले आए और धीरे धीरे उस डेरे ने आश्रम का रूप ले लिया।
अब्बा जान, इंसान को मजहब की कहां तक जरूरत है?
स्वयं को स्वयं पहचाने तब तक।
मानव के पास कोई धर्म नहीं हुआ तो जिंदगी नहीं है क्या?
आम आदमी की इज्जत हो
तो समझो धर्म की इज्जत हो गई। मानव को मानव की तरह ना पहचानने वाले धर्म का रहना ना रहना एक है।
इस आश्रम को देखकर लगता है कवि कालिदास द्वारा निर्मित कनु आश्रम है। सुनिए, प्यास लगी है, पानी मिलेगा?
लाइए, हाथ बढ़ाइए।
एक मोदी का मनोवया वलका लेना वदंती।
कवि कालिदास ने उसका कारण पहले ही चरण में बताया है। मलिन मनु हिमांशु, लक्ष्मा लक्ष्मी तनौती।
आश्चर्य की बात है, मतलब आपने भी अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ा है?
आश्चर्य कैसा, काशी में पली बड़ी लड़की को काव्य अलंकार शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा क्या?
आपके गुरु कौन है?
हमारे ही पिता कबीर दास जी।
छी छी छी, मैंने कितना गलत काम किया, एक विधर्मी की लड़की के हाथों से पानी पिया, मुझे इसका प्रायश्चित करना होगा।
मन साफ हो तो प्रायश्चित जरूरी नहीं है, पानी निर्मल होता है, मन में मैल हो तो वो भी मैला दिखेगा बेटा।
पता नहीं आप कौन है, पर आपको देखते ही लगता है कि आपको देखकर नमस्कार करूं।
तुमने जिसे विधर्मी कहा था वो मैं ही हूँ।
आप में काफिरता तो नहीं, स्वच्छता दिखाई देती है।
वो प्रायश्चित?
हमारा सद ब्राह्मण वंश है, प्रायश्चित तो मेरे लिए नहीं है बल्कि मेरे पिताजी के लिए है, मेरे रिश्तेदारों के लिए है। मैं काशी विद्यापीठ कुलपति विद्वत परिषद सभापति महादेव भट्ट जी का बेटा हूँ। मेरा नाम हरदेव भट्ट है। मैंने अगर प्रायश्चित नहीं किया तो ब्राह्मण वंश मुझे बाहर निकाल देंगे।
कौन है ब्राह्मण? तन पर धागा पहनने से अगर कोई ब्राह्मण हो जाता है तो ये कुडारी भी ब्राह्मण है, क्योंकि रस्सी हमेशा उस पर है। क्या तुम्हारी माँ यज्ञोपवीत है? क्या तुम्हारी दादी यज्ञोपवीत है? यज्ञोपवीत ना होने से अगर कोई शूद्र जाति का हो जाए तो तुम्हारी माए भी शूद्र हो गई ना। उन माओं से पैदा होने वाले तुम ब्राह्मण कैसे हो गए? ब्रह्म ज्ञान पाने वाला ही ब्राह्मण है, ब्रह्मानंद ही ब्राह्मण पद है। बेटी कमाली, शंकर भागवत पाद जी का श्लोक जरा इन्हें पढ़कर तो सुनाओ।
यस्य ब्रह्माणि रमते जिगतम नंदिता नंदिते नंदत तेना भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज रमो मते।
आहा, आपकी बातें सुनकर लगता है प्रायश्चित करना जरूरी नहीं है।
हमारी बातें नहीं, अपने पिताजी की बातें सुनो। इधर जो हुआ जाकर उन्हें बताओ, जो वो कहे वो करो।
उनसे भी बात करके आपके दर्शन करने आऊंगा, परिणाम आकर बताऊंगा। आज्ञा दे।
आने वाली मुश्किलें क्या हैं? लगता है तुमने नहीं सोचा है।
सब कुछ सोच कर ही यह निर्णय लिया है, हर मुश्किल का धैर्य से सामना करूंगा।
अच्छा, इस आश्रम के सदस्य बनना चाहते हो तो कुछ नियम है, जाकर धर्मदास से मिलो, वह सब बता देंगे।
धन्य हो गया। सुनिए, धर्मदास जी कहाँ मिलेंगे?
मैं ही हूँ, कहो।
आप ही धर्मदास हैं? आप भी इतनी मेहनत करके? ये सोचा नहीं था।
मेहनत करना आश्रम के नियमों में सबसे पहला है, लक्ष्य के लिए प्राण भी गए हैं। अपनी सोच को निर्भय होकर कह देना चाहिए। अरे हाँ, जो तुमने सोचा था वो अपने पिताजी को बताकर ही आए हो ना।
मेरे बारे में आपको कैसे पता चला?
मुझे कैसे पता चला? गुरुजी ने बताया। गुरुजी नहीं तो मार्ग नहीं। इस आश्रम में प्रवेश लेना चाहते हो तो इन लकड़ियों को ले जाओ।
स्वामी, दूसरी दीक्षा कुछ मिलेगी?
दूसरी दीक्षा कुछ नहीं मिलेगी, दूसरों के काम आना ही उपदेश है।
कबीरदास से आम लोग जुड़ने लगे, उनको मानने लगे और वे धीरे धीरे एक संत के रूप में विख्यात हो गए। पर उनकी निर्गुण और धर्म विरोधी बातें सभी धर्मों के मठाधीशों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी और वे अपनी फरियाद लेकर सुल्तान सिकंदर लोदी के पास पहुंच गए।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम शेख साहब, ये लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं?
भगवान को मानने वाले ब्राह्मण, अल्लाह को मानने वाले मुसलमान।
हिंदू और मुसलमानों का साथ आना ताज्जुब की बात है, क्या चाहिए इन्हें?
सुनी आपने इनकी परेशानी, न्याय दिलाओ, धर्म बचाओ।
इनके हाथों में ये मशाले क्यों?
दिन में भी गहरा अंधकार नजर आ रहा है अन्नदाता,
इतने अंधेरे में रोशनी दिखाने वाली मशाल ही है ना जापना।
कौन सी मुसीबत आई है?
काशीनगर में कबीर नाम का एक काफिर है हुजूर,
वो एक धर्म में दूसरा धर्म मिला रहा है, अपनी बेटी को हमारे ब्राह्मण सज्जन को देकर ब्याह करवा दिया प्रभु।
शाबाश, उस ब्राह्मण सज्जन का इस्लाम को अपनाने के बाद ही निकाह हुआ है ना?
नहीं कबीर, इधर हमारे मजहब को उधर इनके मजहब को चढ़ाता है, धिक्कारता है।
हुजूर, उसे सजा देकर आपके धर्म को हमारे धर्म को न्याय दीजिए प्रभु।
शेख साहब, वो आपका ही शागिर्द है ना?
हाँ हुजूर, उस शैतान के बच्चे को मरने से मैंने ही बचाया था, वो अब हमारे सर पर चढ़कर बैठा है, किसी को नहीं पूछता।
अगर इतने लोगों के गुस्से का कारण वही है तो उसका कुछ फैसला करना पड़ेगा। बिजली खान, वीर सिम्हा।
जी हुजूर।
उस कबीर के बच्चे को कल सुबह तक मेरे सामने हाजिर करो। आप लोग घबराइए मत, कबीरदास की मैं अच्छी तरह खबर लूंगा।
बादशाह सलामत को इज्जत से सलाम करो।
उस भगवान को छोड़कर मैं किसी और को नमस्कार नहीं करता।
कबीर, पता है तुम्हें क्यों बुलाया गया है?
सब कुछ ऊपर वाला जानता है, कोई बताएगा नहीं तो किसी को कैसे पता चलेगा?
इन्होंने तुम्हारे नाम से फरियाद की है।
ओह, वो लोग जीव हिंसा करने में दोनों बराबर हैं।
बदमाश,
सच हमेशा कड़वा होता है।
मुजरिम, क्या तुम मुसलमान हो?
नहीं।
हिंदू हो?
नहीं।
तो तुम्हारा मजहब?
मेरा मजहब मोहब्बत है, मोहब्बत था और मोहब्बत रहेगा, ढाई आकर प्रेम का, वही मेरा अल्लाह और वही मेरा राम है। जनाब, मैं इसी मजहब की इबादत करता हूँ।
मुजरिम शेख साहब से बिस्मिल्लाह खानी हुई थी ना, असना बुल उसना याद है तुम्हें?
पैमान रही अल मलिक से शुरू होकर अल रशीद हस्तापुर तक 99 दिव्य नाम मैंने बचपन में ही सीख लिए थे।
इतना कुछ, तो फिर काफिरों के भगवान का नाम क्यों लेते हो?
जो प्रेम की दिव्य ज्योति मैं देखता हूँ उसको मैं राम कहता हूँ, इसमें गलत क्या है?
इंसान का कोई एक मजहब होना चाहिए, सब मजहबों में मेरा मजहब सबसे अच्छा है, ऐसा कहते हुए तो मैंने बहुतों को सुना है। लगता है तुम किसी नए मजहब की शुरुआत कर रहे हो।
सब धर्मों की अच्छाइयों को मैं राम के नाम से बता रहा हूँ।
क्या तुम्हें हमारे मजहब पर गर्व नहीं है?
केवल मेरा धर्म ही अच्छा है, कहने वाला मूर्ख है।
कबीर,
शेख साहब इसको सबके सामने कोड़े लगवाए।
बिजली खां,
अनंत करुणामयी, मेरा राम जब तक मुझे बचाएगा मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता।
जिसके साथ राम हो उस इंसान का कोई क्या बिगाड़ सकता है। ना तो कोड़े कबीरदास को अपने राम से डिगा पाए, ना सुल्तान के हाथी के पांव में इतनी ताकत आ पाई कि वे उन्हें कुचल सके। जलती तपती आग भी राम की बारिश में कबीर को आंच तक नहीं लगा पाई। कबीर के राम ने सभी विरोधियों को सजा दी, एक मानवता की मूर्ति को, एक संत को दुख पहुंचाने की। दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जिब की सांस सो लोह भस्म हो जाए।
मुझे क्षमा कर दीजिए महात्मा कबीर जी, मुझे क्षमा कर दीजिए।
कबीर, हम तुम्हारे तेज को नहीं पहचान पाए, हम जाहिलों की तरह पेश आए, हमें माफ कर दो।
कबीर बचाओ, बचाओ। कबीर साहब, आपकी शक्ति को नहीं पहचाना इसलिए इतने जुल्म की, मुझे माफ कर दो। कबीर, मुझे माफ कर दो।
सबको माफ करने के लिए ऊपर वाला है।
कबीर साहब, आज से सभी मजहबों को समान रूप से देखूंगा।
बहुत खुशी हुई, इस्लाम का मतलब शांति का धर्म, शांति के धर्म को शांति से ही चलने दो।
सलाम अलैकुम कबीर साहब।
अल्लाह हाफिज।
हाथी पर सवारी कीजिए और शान से अपने आश्रम लौटिए।
हाथी पर नहीं आया, जो हाथी पर चला जाऊंगा। अरे भाई, मैं तो स्वयं ही चला जाऊंगा।
बेटा कबीर, मुझे माफ कर दे, मेरी मूर्खता की सही सजा दी तुमने, मेरी आंखें खोल दी तुमने। बेटा, आज से दूसरे धर्म से नफरत छोड़कर अपने धर्म की शान बढ़ाऊंगा।
यही नहीं, दूसरे धर्मों का भी आदर कीजिए।
और उम्र के आखिरी पड़ाव में एक दिन राम नाम का ध्यान करते कबीरदास जी से मिलने स्वयं राम चले आए।
राम 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 राम।
कबीर कबीर कबीर,
आप कौन स्वामी?
बहुत खूब, राम राम जपते हो और राम को ही भूल गए।
मेरे राम का कोई रूप नहीं है।
जब रूप नहीं है तो नाम क्यों जप रहे हो? रूप नहीं है तो नाम कैसे रहेगा?
मेरा राम सर्व अंतर्यामी है, हर जगह है, सब में है वो।
मतलब राम हर मानव में, ये मानते हो ना?
मैं राम नाम की शक्ति को देख रहा हूँ, राम व्यक्ति को नहीं।
पगला कहेगा, जो भी राम को पुकारेगा तो मैं ही आवाज हूँ। इस संसार के लिए सिर्फ एक ही राम।
आपका निवास?
मेरे भक्त जहाँ रहेंगे वही मेरा निवास।
तो क्या मेरे में भी? राम राम राम।
और इस तरह कबीर ने राम को पा लिया, इस भवसागर से पार पा लिया। उन्होंने अपनी समाधि के लिए काशी छोड़ा और अपने अनुयायियों के साथ मगहर के लिए निकल पड़े। अपने मित्र की कुटिया में उन्होंने समाधि ली। उनके अंतिम संस्कार के लिए हिंदू और मुस्लिम संघर्ष हो गया। हिंदू उन्हें जलाना चाहते थे और मुस्लिम उन्हें दफनाना, किंतु कफन हटाने पर शरीर की जगह फूल दिखाई पड़े। जिसे दोनों धर्मों ने आधा आधा बांट लिया।
Mangaladayaka Bye. कहो ईश्वर अल्लाह साई कहो
समस्त लोका सुखिनो भवन्तु।
जय बोलो भगवान श्री सत्य जा।